कुछ क्वेश्चन एवं उनका आंसर इस प्रकार से दिया जा सकता है। पहला क्वेश्चन, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या परिणाम निकले? आंसर, अलाउद्दीन के शासनकाल तक मंगोल शांत रहे, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात वे पुनः सक्रिय हो उठे। आरंभिक सुल्तानों ने मंगोल आक्रमणकारियों को पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाग राजधानी ले जाने की जो योजना बनाई, उसका एक प्रमुख कारण मंगोलों के आक्रमण से राजधानी की सुरक्षा भी थी। तैमूर के आक्रमण के कारण, तुगलककालीन मंगोल आक्रमणों में सबसे अधिक प्रमुख मंगोल नेता तैमूर का आक्रमण, उस समय दिल्ली की स्थिति अत्यंत डावाडोल थी। दरबार षड्यंत्रों एवं कुचक्रों का अखाड़ा बना हुआ था। इस स्थिति का उठाकर तैमूर ने 1398 से 1399 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर एक महान विजेता एवं योद्धा था। तैमूर की आत्मकथा मलुफु सात ए तैमूरी से ज्ञात होता है कि तैमूर के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य काफिरों का उन्मूलन करना एवं मूर्ति पूजा को समाप्त करना था, तथा गाजी एवं मोहम्मद मुजाहिद का पद प्राप्त करना था। लेकिन इसके अतिरिक्त तैमूर धन संपदा भी प्राप्त करना चाहता था। आक्रमण का स्वरूप, 1398 ईस्वी में तैमूर भारत विजय अभियान पर निकल पड़ा। संपूर्ण सेना लाहौर होते हुए तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ा। मार्ग में पड़ने वाले राज्यों, नगरों, कस्बों, वस्तियों यथा तुलबा आदि शहरों को लूटता, जलाता तथा निर्दोषों की हत्या करती हुई आंधी की तरह तैमूरी सेना दिल्ली के निकट आकर ठहर गई। दिल्लीवासी भयभीत हो उठे। अशक्त सुल्तान ने तैमूरी आंधी की को मार्ग में रोकने का प्रयास ही नहीं किया। दिल्ली की लूट और कत्लेआम। सुल्तान के पलायन के पश्चात पूरी दिल्ली पर तैमूर का अधिकार हो गया। उसने बड़ी शान से दिल्ली में प्रवेश किया। उसकी आतंक से परिचित दिल्लीवासी अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत हो उठे। कुछ इतिहासकारों के द्वारा पता चलता है कि दिल्ली के प्रमुख निवासियों ने तैमूर से मुलाकात करके उसे धन भेंट किया तथा उस पर अत्याचार न करने की विनती किया। कहा जाता है तैमूर ने दिल्ली वासियों को अलग दान दिया, परंतु कुछ व्यापारियों से संघर्ष में उसके सैनिक मारे गए, जिससे क्रोधाभास में आकर कत्लेआम का हुक्म दिया। हजारों व्यक्ति की हत्या की गई। संपूर्ण नगर लूट लिया गया एवं इसे भाग लगाकर नष्ट कर दिया गया। करीब 15 दिनों तक दिल्ली पर अधिकार जमाए रखने के पश्चात तैमूर की रोजाबाद, वजीराबाद, मेरठ, हरिद्वार और जम्मू के रास्ते लाहौर वापस आया। खिजन खां को लाहौर मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण का प्रभाव। तैमूर के भारत आक्रमण के परिणाम विनाशकारी सिद्ध हुआ। इसने तुगलकों के शासन की इतिश्री कर दी। समूचे राज्य में अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई। रास्ते में पड़ने वाले निवासियों को भीषण कष्ट उठाने पड़े। फसलें चौपट हो गई। नगर एवं ग्राम उजड़ गए। हजारों निर्दोष मारे गए एवं गुलाम बनाए गए। सबसे अधिक दुर्दशा दिल्ली की हुई। पूरी दिल्ली नष्ट कर दी गई। स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि पूरी दिल्ली नष्ट कर दी गई। दिल्ली सल्तनत की शक्ति और प्रतिष्ठा एवं दिल्ली का वैभव समाप्त हो गया। पूरी दिल्ली उजाड़ और वीरान हो गई। दूसरा क्वेश्चन, सल्तनत कालीन आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक विकास की समीक्षा कीजिए। आंसर, सल्तनत कालीन समाज सामाजिक सुव्यवस्था और आर्थिक प्रगति के लिए भी विख्यात है। समाज की रूपरेखा हरेक भागों पर निर्भर करता था। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे एवं व्यापार ही था। तथापि अनेक व्यवहारिक एवं औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ। सभ्यता, सांस्कृतिक आदि का भी विकास हुआ था। इस प्रकार सल्तनतकालीन समाज भी उत्तरोत्तर वृद्धि के पथ पर अग्रसर हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, पहला, कृषि और पशुपालन। कृषि भारतीय की जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही थी। उर्वर भूमि एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण उपज बहुत अधिक होती थी। धान, गेहूं, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। सल्तनत काल में कृषि क्षेत्र का भी विकास हुआ। किसानों को आवश्यकता अनुसार सहायता भी दी गई। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता था। पालतू पशुओं में गाय, बैल, बकरी, भेड़, सुअर, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट आदि प्रमुख थे। दूसरा, तकनीकी विकास। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक विकास हुए, उद्योग धंधे एवं व्यापार वाणिज्य की प्रगति में सहायता मिली, रेशम उद्योग का विकास हुआ। तीसरा, उद्योग धंधों का विकास, अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ। सूरत, पटना, बनारस, दिल्ली, आगरा, बंगाल इत्यादि वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। इस समय धातु उद्योग और चर्म उद्योग के अतिरिक्त कागज, चीनी, शीशा तथा कास्ट उद्योग का विकास हुआ। हीरे जवाहरात से जुड़े आभूषण, सुगंधित तेल, इत्र और मदिरा भी तैयार की जाती थी। चौथा, व्यापार वाणिज्य की प्रगति, सल्तनत काल में आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का भी विकास हुआ। देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर जल एवं स्थल मार्ग से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिनके द्वारा व्यापारी व्यापार करता था। भारत का चीन, ईरान, अरब, मध्य एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से व्यापारिक संबंध था। भारत विदेशों को इस्पात के बने अस्त्र, शस्त्र, सूती वस्त्र, अनाज, शक्कर, नील, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां एवं मसाले, नींबू, संतरा, कागज, हीरा, मोती, चंदन, केसर, कस्तूरी, हाथी दांत, हाथी, मोर इत्यादि का निर्यात करता था। इसके बदले में भारत विदेशों से घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, दास, वस्त्र, मेवे और फल, सोना, जैतून का तेल, इत्र, खजूर, शीशा इत्यादि मंगवाता था। पाँचवा, नगरों का उदय, औद्योगिक और व्यापारिक प्रगति के कारण अनेक नगरों का उदय हुआ। समूचे देश में औद्योगिक, व्यापारिक एवं प्रशासनिक नगरों का जाल सा बिछ गया। अनेक बंदरगाहों का भी तटीय क्षेत्रों में उदय हुआ। इस समय के प्रमुख नगर लाहौर, मुल्तान, उच्च दिल्ली, आगरा, खंभात, धार, देवगिरी, ढाका, बनारस, पटना, कन्नौज, ग्वालियर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर इत्यादि था। छठा, प्रमुख व्यापारिक मार्ग, देश के सभी प्रमुख नगर व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे। प्रमुख स्थल मार्ग तक्षशिला से सोनारगांव तक हो जाता था। यह पेशावर, लाहौर, सरहिंद, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, आगरा होकर बंगाल जाता था। दिल्ली से विभिन्न दिशा में मार्ग जाते थे। दिल्ली पटना मार्ग, दिल्ली मालवा मार्ग, दिल्ली अजमेर मार्ग, दिल्ली लाहौर मार्ग इत्यादि। सल्तनत काल आर्थिक संपन्नता का युग था, परंतु इन आर्थिक संपन्नता का अधिकांश भाग कुलीन वर्ग वाले करते थे। सांस्कृतिक विकास, सल्तनत काल का सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली सुल्तानों एवं स्थानीय शासकों ने ललित कलाओं, भवन निर्माण कला, शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया एवं संरक्षण प्रदान किया। पहला, कला। कला के क्षेत्र में सल्तनत काल में सर्वाधिक प्रगति चित्र एवं संगीत कला के क्षेत्र में हुई। भारत में इस्लामी प्रभाव के कारण मूर्तिकला अधिक विकसित नहीं हो सकी। ए, चित्रकला। पुरातात्विक स्रोतों से चित्रकला के विकास के बारे में पता चलता है कि इस काल में भित्ति चित्र, लघु चित्र एवं चित्रांकित पांडुलिपियों तैयार की गई। इल्तुतमिश समय में चित्रकला प्रचलित थी। लगभग सभी शासकों ने चित्रकला के विकास में भाग लिया। भित्ति चित्र से ज्यादा पांडुलिपि पर ध्यान दिया गया। इस काल की पांडुलिपि खमसा, शाहनामा, मतनमी, गीत गोविंद, भागवत पुराण आदि। दक्षिण भारत में मूर्तिकला का विकास हुआ। संगीत कला। सल्तनत काल में सूफी संतों, हिंदी भक्तों एवं राजदरबार के प्रभावों के कारण संगीत कला का अपेक्षित विकास हुआ। यद्यपि कुरान की पाबंदियों के कारण सुल्तान संगीत पसंद नहीं करते थे, लेकिन अनेक सुल्तानों ने संगीत को प्रश्रय दिया। इस काल में उत्तरी भारत का सबसे महान संगीतज्ञ एक विद्वान अमीर खुसरो हुए। कुछ ने इन्हें तबला और सितार का आविष्कारक माना है। कवाली और गजल गाया जाता था। नृत्य कला। संगीत के साथ साथ राजदरबारियों एवं अमीरों ने नृत्य को भी प्रश्रय दिया। बड़ी संख्या में नृत्यांगनाएं रखी जाती थीं, जो लोगों का मनोरंजन करती थी। दक्षिणी नृत्य, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली, ओडिशी आदि हुआ करता था। दूसरा, स्थापत्य कला। सल्तनत युग में सबसे अधिक प्रगति स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुई। दिल्ली के सुल्तानों, प्रांतीय शासकों, अमीरों और अन्य संपन्न एवं कुलीन वर्गीय लोगों के ने विशाल एवं सुंदर इमारतें, महल, मीनार, दुर्ग, मस्जिद आदि बनवाए। इसके विकास में शाही स्थापत्य कला, प्रांतीय कला एवं हिंदू स्थापत्य कला हुआ। पहला, शाही स्थापत्य कला। कुतुब मीनार इल्तुतमिश, ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने, बलबन ने लाल महल का निर्माण किया। दूसरा, प्रांतीय स्थापत्य कला, प्रांतीय शासकों के संरक्षण में इस काल में कुछ महल बनवाए गए। मुल्तान, बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, कश्मीर और बहमनी राज्य में अनेक भवनों का निर्माण हुआ। तीसरा, हिंदू स्थापत्य कला, हिंदू शासकों एवं सामंतों ने भी अनेक भवनों का निर्माण किया एवं मंदिरों का भी निर्माण करवाया। राजस्थान, विजयनगर, दक्षिण भारत, उड़ीसा हिंदू स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, साहित्य कला, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषा में अनेक ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथों एवं काव्य नाटक तथा गद्य पद की स्थापना हुई। अरबी साहित्य, अरबी साहित्य अत्यंत प्राचीन है। अरबी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। अलबरेनु की कानून ए मसूदी, हिदायत अल फिक आदि है। फारसी साहित्य, भारत में तुर्कों के आक्रमण के साथ फारसी भाषा का व्यवहार बढ़ गया। अधिकांश रचनाएं फारसी भाषा में हुई। अमीर खुसरो फारसी के सबसे महान विद्वान थे। उसने नए फारसी शैली का इजाद किया। तुगलकनामा, सबक ए हिंद, फतवा ए जहंदारी आदि। संस्कृत साहित्य, संस्कृत का भी विकास हुआ। गीत गोविंद, हमीर मदमर्दन, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा, कलहन ने राज तरंगिणी आदि का साहित्य में अधिक योगदान है। हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी बहुत सारे साहित्यों को पढ़ने का मौका मिला है एवं उनके सांस्कृतिक और बहुत सारे कला के बारे में जानकारी लेने का मौका प्राप्त हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक का प्रशासनिक सुधार का वर्णन करें। इतिहासकार अफीक के विवरण से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आरंभिक जीवन के विषय में जानकारी मिलता है। इतिहासकार बर्नी और शम्स ए सिराज अफीक का मत है कि मृत्यु के पूर्व मोहम्मद तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, परंतु इस आशय का कोई लिखित वसीयतनामा नहीं था। अतः सुल्तान के निर्वाचन का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। इस समय गद्दी के दो दावेदार थे, फिरोज शाह तुगलक तथा सुल्तान का भांजा खुदाबंद जदा अमीर, और उलेमा वर्ग ने फिरोज शाह को सुल्तान माना। यद्यपि कुछ अमीरों ने खुदा बंदजदा का साथ दिया। फिरोज शाह की समस्याएं, विषम परिस्थितियां थीं। उस समय राज्य के सर्वत्र अव्यवस्था, राज्य में सर्वत्र अव्यवस्था छाई हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों और उसकी योजना से सुल्तान की प्रतिष्ठा नष्ट हो चुकी थी। अकाल और महामारी से कृषि, उद्योग और व्यापार नष्ट हो गया था। राजकोष रिक्त हो गया था। राज्य में जगह जगह विद्रोह होने लगे थे। जनता में असंतोष व्याप्त थी। फिरोज शाह के प्रशासनिक सुधार, पहला, सहानुभूति और समर्थन प्राप्ति का प्रयास। दूसरा, अमीरों और उलेमा के प्रति नीति। तीसरा, धार्मिक नीति। चौथा, राजस्व व्यवस्था एवं आर्थिक सुधार। पांचवा, न्याय व्यवस्था। छठा, सैन्य व्यवस्था। सातवां, जनकल्याण एवं परोपकार कार्य। दयालु प्रकृति का होने के कारण फिरोज शाह ने जनकल्याण के लिए बहुत से कार्य किए थे। आठवां, फिरोज शाह का निर्माण कार्य। नौवां, शिक्षा एवं साहित्य के विकास को संरक्षण प्रदान करना। चौथा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के में बार बार वंश परिवर्तन के क्या कारण थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में ऐबक द्वारा की गई थी। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत स्थापित रही। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर या परास्त करके दिल्ली सल्तनत की कब्र में मुगल साम्राज्य के भव्य भवन का शिलान्यास किया। इस प्रकार यह सल्तनत 300 वर्षों तक कायम रही। इसी काल में 5 राजवंशों की स्थापना हुई। ये राजवंश इस प्रकार से थे, पहला, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। दूसरा, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। तीसरा, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। चौथा, सैयद वंश 1451 ईस्वी। पांचवा, लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। इस प्रकार किसी राजवंश ने एक शताब्दी तक शासन नहीं किया। स्पष्ट है कि दिल्ली सल्तनत में राजवंशों का शीघ्र परिवर्तन हुआ, जिसका मुख्य कारण निम्न है। पहला, सुल्तान के व्यक्तित्व का महत्व। दूसरा, सुल्तान का विदेशी स्वरूप। तीसरा सुल्तानों की स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता, चौथा धार्मिक पक्षपात नीति, पांचवां जलवायु का प्रभाव, छठा उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव, सातवां दास प्रथा का दुष्परिणाम, आठवां सैनिक संगठन में दोष, नौवां सीमांत नीति की असफलता, दसवां प्रजा के हितकारी कार्यों की उपेक्षा, ग्यारहवां मंगोलों के आक्रमण, बारहवां आंतरिक भेदभाव, तेरहवां दयनीय आर्थिक स्थिति, चौदहवां धर्म का राजनीति पर प्रभाव, पंद्रहवां सामाजिक भेदभाव।